जिसको हम गुरु मानते हैं उनका भी कोई गुरु है, और जिसको वो गुरु मानते हैं उनका भी कोई गुरु है, और उन गुरुओं का भी कोई गुरु है। तो ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव ऐसा नहीं है कि किन्हीं गुरु जी के पास जा कर के उनको हमने, उनके भी तो गुरु हैं। तो ये तो गुरु परंपरा प्राचीन काल से है। तो ऐसे अगर खोजते चले जाएं गुरुओं के गुरुओं के गुरुओं के गुरुओं के गुरु, तो फिर कौन मिल जाएंगे? परम गुरु। परम गुरु परमात्मा। इसलिए महर्षि पतंजलि महाराज ने अपने योग सूत्र में ये बात स्पष्ट कर दी। उन्होंने ये बात स्पष्ट लिख दी वहां, पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात। जो हमारे पूर्वज हुए, पहले गुरु हुए, उनके भी एक गुरु हैं। कालेन अनवच्छेदात, जिनका समय की अवधि से व्यवधान नहीं है। ऐसा नहीं है उन परम गुरु के बारे में कि वो कभी थे और कभी नहीं थे, वो सदा से हैं, शाश्वत सत्य परमात्म देव। और बड़े मजे की बात है, वो सदा से हैं, सब जगह हैं, सब में हैं, सबको प्राप्त हैं, और वो ही प्राप्त नहीं हो रहे। बड़ी झंझट की बात है, सदा हैं, सब में हैं, हर समय हैं, हर स्थान पर हैं, और जब तक उनका अनुभव नहीं हो जाए तब तक ये भटकन मिटेगी नहीं, किसी की मिटी नहीं। फ्रस्ट्रेशन में ही मरना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है उसके अलावा। और यदि उनका अनुभव हो गया तो फ्रस्ट्रेशन जैसी बातें रहती नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता है उनका, वो तो जीवन का आनंद आ गया सदा के लिए। तो इस प्रकार से अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों ही बातों को लेकर के हमारे महापुरुषों ने मार्गदर्शन किया। अब इसमें हमारे सांस्कृतिक इतिहास में ऐसे तो ये भी अनादि काल से समझें, क्योंकि मानव धर्म के रूप में है द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं। जब से मानवता शुरू हुई, सिद्धांत भी उसके ऐसे ही हैं। फिर भी जितना आधुनिक काल में हमें पता है, उसी ज्ञानात्मक प्रेमात्मक परम सत्ता का जो अंतिम अवतरण श्री कृष्ण रूप में हुआ, उनको हमने कहा कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो जो निराकार रूप में शक्ति रूप में सत्ता रूप में तो स्वीकार सबको करना पड़ेगा, उसमें तो संदेह है ही नहीं। शक्ति है, सत्ता है, ज्ञानात्मक सत्ता प्रेमात्मक सत्ता अनादिकाल से है, लेकिन जो सगुण साकार में विश्वास करते हैं उनके लिए राम अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ, दूसरे अवतार भी हुए। उसी समय में, उसी काल में एक और असाधारण महापुरुष हुए जिनका नाम श्री वेदव्यास जी महाराज। श्री वेदव्यास जी महाराज ने रचना की पुराणों की, अनेक शास्त्रों की, और इसलिए आज का दिन व्यास पूर्णिमा के नाम से भी प्रचलित हुआ। उनको गुरु रूप में स्वीकार किया, महाभारत उनके द्वारा लिखा गया, गीता भी उसका अंश है महाभारत का, जो परम ज्ञान है वो उनकी लेखनी से हुआ, इसलिए व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, और इसलिए इस स्थान को व्यासपीठ भी कहते हैं। इसलिए जब मैं यहाँ बैठा, इससे पहले मैंने उनको प्रणाम किया, वहाँ भी यहाँ भी, ये उनका स्थान है सदा के लिए। अब हमेशा ही ऐसा हुआ करता है कि मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, अलग अलग बुद्धि में, अलग अलग खोपड़ी में अलग अलग प्रकार के सिद्धांत पैदा होते रहते हैं। जब तक भगवान का ये अनुभव न हो जाए तब तक ये सिद्धांत पैदा होने भी बंद नहीं होते। भगवान का अनुभव होने के बाद तो फिर सिद्धांत विद्धांत कुछ रहते नहीं हैं, फिर काहे का सिद्धांत रहना है, सारे सिद्धांतों की जड़ी मिल गई। तो फिर इसी पर्व की और इस गुरु रूप में उस आदि शक्ति परमात्मा के पूजन की और किसी मानव के माध्यम से भी उसी तक पहुंचने की यात्रा में कई प्रकार की अलग अलग व्याख्याएं शुरू हो जाती हैं। जैसे एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा कहा जाता है हिंदी में, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियों बताए। कई कई प्रकार से इसकी व्याख्या करते हैं। मेरी व्याख्या ये है कि बलिहारी गुरु आपकी, प्रश्न क्या पूछा था, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाव, ये प्रश्न था किसके पैर लगूं। तो बलिहारी गुरु आपकी, आपने कमाल कर दिया क्या कि क्या बताया कि गोविंदियों बताया गोविंद के पैर लग, इसी में तो कहा है बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियों बताए। अरे भाई तैने पूछा किसके पैर लगूं, तो उन्होंने कहा गोविंद के लग। और अब एक बड़े मजे की घटना घटती है, कोई उसी व्यक्ति को गोविंद मान करके उसके तरफ चले तो वहां भी गोविंद प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि गोविंद सभी जगह है ना, सभी में है ना, सदा है ना, गोविंद का तो अभाव संभव नहीं है। मगर इसमें एक समस्या है बड़ी भारी, बहुत जगह इस शरीर की पूजा आरंभ हो जाती है। शरीर का सम्मान भी ठीक है किसी रूप में, कोई दोष नहीं, लेकिन शरीर तो सबके हाड़ मांस के एक जैसे ही हैं। भगवान के प्राकृत्य के अलावा जिनका शरीर चिन्मय है, जिनके अस्तित्व में आत्मा और शरीर का अंतर नहीं होता अवतार में, बाकी तो सब हाड़ मांस के हैं। इसलिए यदि कोई अपने शरीर की पूजा कराए उससे हमारा मतभेद है, हमारी वहाँ उसमें ठीक विचार नहीं बैठता उनके साथ। गुरु तो वो ही है जो गोविंद को बताए, जो गोविंद की तरफ ले जाए, भगवान की तरफ इशारा करे, वहीं जाए। अपने ही समय में कई महापुरुषों से, जैसा मैंने कल भी बतलाया था वहाँ सत्संग में शाम को, कई महापुरुषों से विभूतियों से संपर्क होने का अवसर आया, उनके चरणों में बैठने का अवसर मिला। फिर अंत में एक ऐसे महापुरुष मिले जिन्होंने सारे जीवन जो उनके संपर्क में आए गोविंद को बताने के अलावा कोई काम ही नहीं किया, स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, उन्होंने यही काम किया। अब उनका जो स्तर था कार्य करने का वो तो थोड़ा भिन्न था, ऊंचा था, बहुत ऊंचा स्तर था। वो तो गुरु पूर्णिमा भी नहीं मनाते थे कुछ भी नहीं। मुझे किसी ने बताया कि लोग चले जाते थे तो भगवान की मूर्ति एक सामने रख देते थे गोविंद की, भाई पूज कर जो तेरी मर्जी आए। और बाद में जब उन्होंने शरीर छोड़ा तब तो अपनी लीला अद्भुत रूप में दिखलाई दी, सारी सारी बिल्कुल साधारण तरीके से सब बतला दिया। और हमारे बीच में ऐसे भी हैं, बड़ी प्रसन्नता की बात है, जिन्होंने जिनको अवसर मिला स्वामी जी महाराज के शरीर की देखभाल का, उन्होंने कभी पूछा उनसे कि महाराज मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ शिष्य रूप में, आप मुझे स्वीकार करें। तो महाराज ने कुछ देर चुप रह करके कहा कि एक बात बताऊं, आपका नाम लेकर के कहा कि हाँ जी बताइए कि देख भगवान कृष्ण तो गुरु और गीता दीक्षा, कहीं अटको मत बीच में। मेरा भी सौभाग्य हुआ उन महापुरुष के पास कई बार बैठने का, बातचीत करने का। तो जैसा रास्ता मुझे बताया वही मैं आप सबको बता रहा हूँ, वो तो परंपरा चलती है। इस प्रकार से सारे भव बंधन कट जाते हैं। एक विशेष बात यह है जानने की, इस भूमंडल पर गुरु और सदगुरु का अभाव कभी नहीं होता, यहां सद शिष्य का अभाव रहता है। शिष्य बनने की देरी है, सीखने की प्रवृत्ति की देरी है, अपने को समाप्त करके किसी के चरणों में समर्पित हो जाने की देरी है। यहां पर भगवान सदगुरु तो सदा ही विद्यमान है अनेक रूपों में, यह सारी सृष्टि उन्हीं का तो विस्तार है। यह सृष्टा ही तो किसी रूप में लीला करके सृष्टि रूप में प्रकट होते हैं। यह जो कुछ भी इंद्रियों से हमें भासमान होता है इसमें ही छिपे हैं, यहीं हैं। शरीर और आत्मा का कोई भेद थोड़ा ही संभव है अलग अलग, सृष्टा और सृष्टि का भी अलग अलग संभव नहीं है। ये तो अंदर की दृष्टि बदलती है, दृष्टि बदली सृष्टि की व्याख्या बदली, सब बदल जाता है। उस दृष्टि को बदलने के लिए ही हम यहाँ समय समय पर मिलते रहते हैं। इस प्रकार से आज इस परम पवित्र पर्व पर कुछ बातें अपने सद्गुरु और भगवान गुरु और अनंत गुरुओं की कृपा के परिणाम स्वरूप मैंने आपके सामने रखी। आप में ये सब प्रवेश कर जाएं, बातें रूपांतरण हो जाए इसी जन्म में और संकट कट जाए इसी जन्म में। आगे कहाँ कहाँ क्या मालूम है, कौन सा जन्म कब कैसे क्या होगा, कहाँ कौन से फजीते होंगे कोई जानता तो है नहीं, ठीक है ना। अभी भी फजीते तो बहुत हो चुके हैं अलग अलग आयु वर्ग के लोगों के, अभी कुछ को देखने हैं आगे फजीते। अच्छा, कुछ देख चुके हैं, कुछ देखने के प्रोसेस में हैं। तो ये सारे समाप्त हो जाती हैं वे समस्याएं जब भगवान की कृपा का अनुभव घट जाता है।